हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रात का वक्त था, करीब 10 बजे। रुहान का कमरा बेचैनी से भरा था और शुगर के बोलने की आवाज़ आ रही थी। अनाही और रुहान दोनों सोफे पर बैठे थे और अपने गालों पर दोनों हाथ रखे फर्श पर बैठे कालूराम और शुगर बेबी को देख रहे थे। रुहान ने तिरछी नज़र से अनाही को देखते हुए कहा, मैं इसे बाहर छोड़कर आया था, वापस कैसे आ गया? अनाही ने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की और सख्त लहजे में बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कालूराम को बाहर छोड़ने की? और वैसे भी शुगर ने इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, तो ये इसे बाहर नहीं जाने देंगी। आप क्यों जिद कर रहे हैं? सो जाइए। वैसे भी शुगर का अलग से कमरा है, तो ठीक है, इन दोनों को हम वहाँ छोड़ देते हैं और कल जैसे मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद किया था वैसे ही दरवाज़ा बंद कर देंगे, तो ये आपको परेशान नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है तो मैं इसे बालकनी में ले जाती हूँ, मैं भी बालकनी में सो जाऊंगी, फिर तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अनाही के उस बिल्ली के साथ सोने की बात सुनकर ही रुहान का चेहरा फीका पड़ गया था और उसने गुस्से से कहा, नहीं, आपको इस कालूराम के साथ सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेड पर सो जाइए, मैं इन्हें इस कमरे में ही बंद करके आता हूँ। इतना बोलकर रुहान उठा और उन दोनों बिल्लियों को अपने एक एक हाथ में पकड़ते हुए उस कमरे में चला गया। उसके जाते ही अनाही, जिसने इतनी देर से अपनी हंसी कंट्रोल कर रखी थी, वो पेट पकड़कर हंसने लगी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था रुहान का ये चिढ़ा हुआ चेहरा देखकर। रुहान वापस आया तो उसने देखा कि अनाही पहले से बैठ के एक कोने पर सोई हुई थी। रुहान उसके बगल में लेटते हुए जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, अनाही तुरंत उसकी तरफ करवट बदलते हुए बोली, आज ताई जी आई थी कमरे में, क्या बात कहकर गई वो आपसे? रुहान ने गुस्से में कहा, वो मेरी ताई जी है ना, वो जो भी बात करके गई हो उससे आपको क्या मतलब? आपको जो बताना चाहिए आप वो तो मुझे बताती नहीं है, कोई और बताता है तो वो भी आपको जानना होता है, मेरी जासूसी करना बंद कर दीजिए। हमेशा आराम से जवाब देने वाला रुहान अचानक गुस्सा क्यों हो गया, इसका अनाही को कोई आइडिया नहीं था। उसने हैरानी से रुहान के चेहरे को देखा। रुहान ने अपनी एक बाजू अब अपनी आंखों पर रख ली थी, जिससे उसका आधा चेहरा ही अनाही को दिख रहा था। अनाही को नहीं पता था कि आज रुहान ने माइग्रेन की मेडिसिन ली थी और उसकी सभी मेडिसिन में माधवी ने ऐसे ड्रग्स मिला रखे थे जिससे रुहान शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहा था, तो कभी उसे ड्रग की लत लग जाती थी। और रही सही कसर माधवी की इन बातों ने पूरी कर दी थी कि वेदांत और अनाही देर रात को आए थे, जिस वजह से विवाह घर छोड़कर चली गई थी। पर फिलहाल अनाही को रुहान पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी करवट बदलते हुए कहा, आगे से नहीं पूछूंगी मैं आपसे, आई एम रियली सॉरी। रुहान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी तरफ का लैंप भी ऑफ कर लिया, जिससे अब कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। अगला दिन आम दिनचर्या में ही गुजर रहा था। शाम का वक्त था जब वेदांत बेचैनी से अपने केबिन में चक्कर लगा रहा था, क्योंकि इस वक्त उसे विवाह को देखने की आदत जो हो गई थी। जब से विवाह ने ऑफिस ज्वाइन किया था तब से वो शाम के वक्त वेदांत को सबसे ज्यादा परेशान करती थी, और अब उसका परेशान न करना भी वेदांत को खटक रहा था। वो चेयर पर बैठा और गहरी सांस लेकर अपना फ़ोन लेते हुए विवाह का नंबर डायल कर लिया। दो रिंग जाने के बाद उधर से विवाह ने फ़ोन उठाया तो वेदांत ने जल्दी से कहा, कैसी हो टमाटो, तुमने तो मुझे एक मैसेज भी नहीं किया, कम से कम यही पूछ लेती कि मैं आराम से घर पहुंच गया या नहीं। उधर विवाह अपने कमरे की बालकनी में लगे झूले पर बैठी थी। उसने झूले को आगे पीछे हिलाते हुए कहा, ये तो आपको सोचना चाहिए था, आप जब भी पहुंचे थे मुझे आप इन्फॉर्म कर देते, वैसे मुझे नहीं लगता आपको मेरी याद आ रही होगी, जाइए आराम से पार्टी करके लिए अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करिए, मैं आपके पास नहीं आने वाली हूँ। वेदांत ने हैरानी से कहा, कैसी बातें कर रही हो टमाटो, बस एक ही बार तो मैंने ड्रिंक की थी, मुझे सच में नहीं पता था कि मैं वापस घर आने वाला हूँ, वरना मैं कभी ड्रिंक नहीं करता। विवाह ने मुंह बनाते हुए कहा, सब बहन है आपकी, मैं अच्छे से जानती हूँ आपको, अकेले रहेंगे ना तभी आपकी अकल ठिकाने आएगी कि विवाह आपको जितना परेशान करती है उतना एंटरटेन भी रखती है, विवाह की मौजूदगी को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। अभी ये सब कुछ इधर आते हुए बोल रही थी, वहीं उसकी ये बात सुनकर वेदांत ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपना सर चेयर पर टिका लिया और फिर गहरी सांस भरकर बोला, वैसे तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है टमाटो, चाहकर भी तुम्हारी ना मौजूदगी कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि मुझे अकेले रहना है, तुम जल्दी मेरे पास वापस आ जाओगी ना? विवाह ने उसके मज़े लेते हुए कहा, नहीं मैं तो प्लान बना लिया है, मैं अपना कॉलेज यहीं से करूँगी, आप देखना जल्दी मेरे पापा आएंगे और मुझे कॉलेज से मेरा टिकट कटवाकर वापस यहाँ ले आएंगे, उसके बाद 4 साल का कोर्स है जो मैं यहीं से करूँगी, चार साल के बाद मैं ससुराल आऊंगी। वैसे भी मेरी उम्र नहीं है ससुराल आने की। अनाही दीदी तो 25 की उम्र में ससुराल जा रही है, तो कम से कम मुझे 24 की उम्र में आने का हक तो है। और इस बारे में मैं सासू माँ से अलग से बात भी कर लूंगी। फिर आपको ना तो मेरा टमाटर जैसा चेहरा देखना पड़ेगा और ना ही मेरी बकवास सुनाई पड़ेगी। वेदांत ने परेशान होते हुए कहा, प्लीज टमाटो, ऐसा मत करना। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, कभी भी तुम्हारे सामने ड्रिंक करके नहीं आऊंगा, चाहे कोई कितना भी बोले। विहा ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश करते हुए कहा, आप ही तो बोलते हो आपको अपनी उम्र से छोटी लड़कियां पसंद नहीं हैं, और मैं तो इतनी छोटी हूँ, तो जब मैं 24 की हो जाऊंगी तब शायद आपको अच्छी भी लगने लग जाऊं, तो हमारी शादीशुदा जिंदगी भी आराम से कट जाएगी। और जैसे आप रात को मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे, मेरी तो जान हलक में आ गई थी, और मुझमें तो इतनी पावर भी नहीं है कि मैं आपको रोक पाऊं, तो मैं इन चार सालों में जिम भी जाऊंगी, और देखना अच्छी खासी बॉडी बनाकर आऊंगी, उसके बाद मैं आपको रोक पाऊंगी जब जब मेरा मन नहीं होगा। वेदांत ने फिर से अपना सर चेयर से टिका कर आंखें बंद करते हुए हल्की आवाज में कहा, कब होगा तुम्हारा मन? ये सुनकर विहा का चेहरा टमाटर जैसा फिर से लाल हो चुका था, और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे मम्मी बुला रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना बोलकर उसने जल्दी से फोन कट किया और फोन को झूले पर फेंकते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ठरकी आदमी, आप देखना कॉल भी रिसीव नहीं करूंगी। वहीं वेदांत ने जैसे ही कॉल काटने की आवाज़ सुनी, उसने अपना फोन अपने सर पर मारते हुए कहा, ये लड़की मुझे पागल कर देगी, मैं कब से ऐसी बातें करने लगा। वो खुद से बातें कर ही रहा था कि जूली वहां आते हुए बोली, सर, मिस्टर मखीजा ने जो होटल बुक करवाया था वो बहुत ही खराब होटल था। अगर आप पूरी रात वहाँ रह जाते तो आपकी रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती। अच्छा हुआ अनाही मैडम आपको रातों रात वहाँ से ले आई। इतना बोलकर जूली ने एक फाइल वेदांत के सामने रखी, जिसमें उसे होटल की सारी डिटेल थी। वेदांत ने अपना फोन साइड में रखते हुए उसे फाइल को ओपन किया। करीब 5 मिनट पढ़ने के बाद वेदांत ने गुस्से में फाइल को बंद करते हुए कहा, मिस्टर मखीजा को यहाँ इनवाइट करो, मैं भी बताता हूँ इन घटिया चालू का मतलब क्या होता है। मुझे लगा था पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनकी शान रखने के लिए मैं इतनी दूर भी चला गया, ना मैंने वक्त देखा और ना ही उनसे कोई डिमांड की एक्स्ट्रा, और उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। जूली ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और अपना फोन निकालते हुए मखीजा के पर्सनल असिस्टेंट को कॉल लगा दिया।